तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है दामोदर कार्तिक मास में श्री श्री राधा राधिका रमण मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर पंजाई बाग में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के चौथे अध्याय जिसमें अम्बरीश महाराज की उत्तम भक्ति का वर्णन है उसका हम श्रवण वर्णन कर रहे हैं। नवे स्कंद का नाम क्या दिया है श्रील प्रभुपाद ने? क्या है? नवे स्कंद का नाम दिया है लिबरेशन। देखो इसका मतलब है मुक्ति। और नवे स्कंद में है क्या? ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। बंधन कैसे होता है? हृदय में कई जन्मों के मन के ऊपर जो वासनाएं होती हैं वो बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, और भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है तो अपने आप मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो नवे स्कंद के अंदर 24 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश के वर्णन में भगवान रामचंद्र के अवतार का वर्णन है और 10 पुत्र विवस्वन मनु के, विवस्वत मनु के 10 पुत्रों के वंश का वर्णन है। और ये सब महान भागवत पुरुष हैं, जिसमें अम्बरीश जैसा महाराज है जिसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, जिसमें भागीरथ जैसा भाग्यशाली है जो पृथ्वी के ऊपर गंगा को लाया है, तो ये सब महान भागवत पुरुष हैं। और दूसरे 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है जिसमें परशुराम और भगवान श्री कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन है। वहाँ भी बहुत अद्भुत भक्तों का चरित्र, पूरे यदुवंश की उत्पत्ति उसका वर्णन है, पांडवों का और भगवान, ये सब महान भागवतों का और भगवान का चरित्र है। अम्बरीश महाराज सूर्य वंश के राजा हैं तो उनकी राजधानी कौन सी है? अयोध्या। सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या है। अम्बरीश महाराज अयोध्या के नरेश थे, लेकिन तपस्या करने के लिए कहां आए थे? वृंदावन में, अम्बरीश टीला पे। अभी आज भी वृंदावन में ब्रज में अम्बरीश टीला है, तपस्या यहां करने आए थे। संभवतः कार्तिक के महीने का ही एक ध्यान में ऐसे आ रहा है, लेकिन जो भी हो तो एक तीर्थ में रहने वाले दूसरे तीर्थ, अयोध्या भी पूरी है और मथुरा भी पूरी है, तो तीर्थों का भी, तो यहां तपस्या करने यहां आए थे और कर क्या रहे थे? एकादशी का व्रत। वैष्णव को 3 निष्ठाएं पक्की होनी चाहिए। एक नाम निष्ठा कि हमें नाम तो निरंतर जपना है। दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी गले में धारण करनी है, तुलसी का दर्शन करना है, प्रणाम करना है। और तीसरा एकादशी निष्ठा, एकादशी का व्रत करना है। ये वैष्णव की का परिचय है। ये 3 निष्ठाएं वैष्णव की निश्चित होनी चाहिए। तो निरंतर यतीम का तीन काम करना चाहिए। अम्बरीश महाराज हमारे भक्ति के नौदा भक्ति का हमको नौ प्रकार की भक्ति का हमारे पास प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं में नौदा भक्ति है। तो किसी एक अंग की भक्ति भी की जा सकती है और उसके उदाहरण हमारे पास हर एक अंग के हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी कीर्तन का है और परीक्षित महाराज श्रवण का है, ऐसे बहुअंग भक्ति का उदाहरण अम्बरीश महाराज है। बहुअंग भक्ति का मतलब नौ ही अंगों की भक्ति, एकांगी भक्ति नौ बहुअंगी भक्ति, तो बहुअंग की भक्ति का उदाहरण अम्बरीश महाराज है। वैसे अम्बरीश का अर्थ है जिसके हृदय में भगवान के सेवा की लालसा जैसे अग्नि जलती है ऐसे जलती रहे, अंदर में ऐसी उत्कंठा हो कि भगवान की सेवा के बगैर जी नहीं रह सकता हूं। तो ये जो सेवा का अंदर में, वैसे तो उसका अर्थ जलन है लेकिन ये जलन मीठी जलन है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये अम्बरीश महाराज के चरित्र में हम अब सुन रहे हैं कि एकादशी का व्रत का पारण का समय, पारण का समय मतलब अब जो अनुष्ठान था 12 महीने की एकादशी करने का वो पूरी हो गई और द्वादशी के दिन समय मुहूर्त निकला जा रहा था। कथा असल में ऐसे है कि अम्बरीश महाराज के समय में नारद घूमते हुए वैकुंठ चले गए और भगवान नारायण ने कहा अम्बरीश जैसा महाराज, जैसा भागवत पुरुष इस वक्त धरती पे नहीं है। और नारद घूमते हुए स्वर्ग में आए और सब देवताओं के बीच में कहने लगे कि भगवान जिनका गुणगान कहर कर रहे ऐसा भक्त भागवत इस वक्त धरती के ऊपर अम्बरीश है। भाई भगवान जिसका गुणगान करे वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? तो नारद जी ने पूछा इंद्र बताओ कोई स्वर्ग में आया है जब से अम्बरीश राजा बना है? बोला नहीं। बोला कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं करता है, कोई कर्मकांड करता ही नहीं है, सब भागवत पुरुष है। और फिर रामराज से पूछा कि तुम्हारे नरक में कोई आया? बोले नहीं, खाली कराए, पुराने के ऊपर काम चला रहे, कोई नरक में नहीं आया। बोला क्यों नहीं आया? बोला अम्बरीश जैसा राजा है इसलिए, न कोई तो स्वर्ग की इच्छा करता है, नरक की इच्छा कोई नहीं करता, ये अम्बरीश की मान्यता है। तो दुर्वासा जी वहां बैठे हुए कहे कि आप कहते हैं ठीक है लेकिन मैं परीक्षा लूंगा, तब मैं प्रमाणित करूंगा। तो वहां से संकल्प करके दुर्वासा मुनि उसी वक्त परीक्षा लेने के लिए आए जब पारण का मुहूर्त हो रहा था, उसी समय आए जब पारण का मुहूर्त का समय था। तो ये देखना है कि दुर्वासा, पहले दुर्वासा का परिचय भी समझना चाहिए। दुर्वासा कौन है? अत्रि ऋषि और अनुसूया का पुत्र है। ये दोनों भागवत है, भागवत महाभागवत है, अत्रि और अनुसूया का पुत्र है। और अत्रि तो चंद्रवंश का चंद्र, अत्रि का पुरुष पुत्र है जहां से चंद्रवंश शुरू होता है। और अम्बरीश भगवान शंकर का अंश है, भगवान शंकर का अंश है जो महावैष्णव है। हाँ, दुर्वासा शंकर जी का अंश है जो महावैष्णव है। ये तो परीक्षा अम्बरीश की महानता दुनिया को दिखाने के लिए ले रहा है। इसको ऐसे समझना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि दुर्वासा जो है ऐसे क्यों अम्बरीश के ऊपर क्रोधित हो रहा है। परीक्षा कभी ऐसी सख्त सख्त ली जाती थी जैसे हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कितना बड़ा विश्वामित्र ने जो है संकट डाला था। तो ये परीक्षा है असल में। वैसे तो शंकर के अंश के नाते तो सामान्य व्यक्ति नहीं है दुर्वासा जी, जिसके अंदर कोई दुर्वासना नहीं हो वो दुर्वासा है, दुर्वासना तो है ही नहीं, कोई दुर्वासना नहीं है उसमें, इसलिए दुर्वासा है, तपस्वी है वो। तो भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा लेने के लिए द्वारका चले गए थे। तो आए और कहा कि महाराज भोजन करूंगा, भूखा हूं। ये तो पांडवों के पास भी चले गए थे, भोजन करूंगा, वो अकेले ही नहीं जाते हैं, बहुत बड़े शिष्यों की जमात लेके जाते हैं साथ में। महाराज ने कहा हमारा सौभाग्य है आज हमारे व्रत का पूर्णाहुति हो रही है, आप जैसे महान मुनि पधारे हैं, तो हमारा सौभाग्य। बोला ठीक है, पहले नहा के आऊँगा बाद में खाऊंगा, अभी मैंने अपनी नित्य क्रिया नहीं की, सुबह की पूजा पाठ करूंगा बाद में खाऊंगा। ये भी अच्छा सीखने की बात है, जब तक नेम पूरा नहीं हो तब तक नहीं खाना है, ये भी अच्छी बात है। जो आ गया महाराज, और महाराज आए नहीं, वापस उधर ही बैठ गए। अब पंडित जी कह रहा है महाराज आपका व्रत का मुहूर्त निकलना जा रहा है। बोले नहीं, अतिथि को खिलाने के बगैर कैसे खा सकता हूं, ये भी मर्यादा है। तो महाराज ऐसे कीजिए, अगर कोई निर्जल व्रत करता है तो पानी पीने से पारण हो जाता है, कोई जल पी के व्रत करता है तो दूध पीने से भी व्रत का पारण हो जाता है, कोई दूध पी के व्रत करता है तो फल खाने से भी पारण हो जाता है, कोई फल खा के व्रत करता है तो अन्न खाने से पारण होता है। तो हरेक के पारण की अपनी विधि, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही जो है अन्न खाना ही पारण, ऐसा नहीं है। तो महाराज ने कहा जल पी के व्रत कर लेंगे, व्रत का पारण जल से कर लिया। ये वेद का सिद्धांत है, ये जो इस शास्त्र का नियम है ऐसा, क्या निर्जल वाला पानी पिया तो पारण हो गया। नहीं, अन्न तो इसलिए खाते हैं कि हम कूटू पकोड़े के साथ पनीर की सब्जी खाते हैं इसलिए। निर्जल वाले का पारण जल पीने से हो जाएगा, क्योंकि उसने व्रत जल का ही किया तो जल पीने से भी पारण हो जाएगा। अन्न का तब करना पड़ता है जब फलाहार करते हैं। नहीं, ऐसे नेम ये है शास्त्र का। इसलिए आप देखें, कभी एकादशी के बाद दूसरे दिन हमारे को दोपहर तक व्रत करना पड़ता है, जैसे वामन द्वादशी आती है तो सुबह में पारण उस चीज से कर लेते हैं जो नहीं खाई है कल, ऐसा विधान बने हुए, क्योंकि ऐसे नियम आते हैं। अब हम एकादशी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, दूसरे दिन आधा दिन पूरा प्रभुपाद जी के आविर्भाव का तिथि का व्रत है, तो पारण उसका भी कैसे, कोई उसका नियम तो होना चाहिए ना कहीं। तो ये कुछ नियम शास्त्रों में ऐसे विधान है, आपने किस चीज का व्रत किया है। आप केवल कुछ लोग दूध पे रहते हैं तो फल खाने से भी पालन हो जाएगा, क्योंकि वो चीज का तो व्रत ही था ना कल, तो इस चीज का नेम ये है। तो महाराज ने जल पी लिया, बस जल जल भी कितना जितना चरणामृत लेते हैं वैसे, कि जैसे निर्जल एकादशी के दिन भी चरणामृत इतना लेना चाहिए कि जबान के ऊपर सिर्फ पहुंचे, नीचे नहीं जाए। चरणामृत का मतलब एक बूंद चरणामृत की जबान तक जाए, नीचे गले से नहीं जाए। तो चरणामृत का आदर तो करना चाहिए ना, वो तो भगवान का चरणामृत है, और उसका व्रत थोड़ी है कि दही डलता है चरणामृत में इसमें नहीं खाएंगे कार्तिक में, ये नियम नहीं है। भगवान के चरणामृत की महिमा बाकी सब नियमों से ऊपर, नियमों से ऊपर है ये, लेकिन इतना नहीं पीना चाहिए कि गिलास भर के चरणामृत पी दे। वो नियम है। तो सिद्धांत ऐसे है। अब दुर्वासा जी वापस आए और अम्बरीश महाराज ने कहा महाराज भोजन करो, वो तो आए परीक्षा लेने थे। बोला क्यों ऐसे खा के फिर हमको खिलाओगे। उन्होंने तो ध्यान करके देख लिया महाराज ने जल पिया है। बोला महाराज पारण का समय निकल रहा था और मुहूर्त के अंतर्गत हमने तो जल पान किया है, तो क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर जटाओं से बाल निकाला और उसको जैसे धरती के ऊपर पटका उससे कृत्या बन गई, उसको कहते हैं कृत्या। असुरी प्रवृत्ति की ऐसी उत्पत्ति करते हैं उसको कृत्या कहते हैं, यह शब्द कृत्या है संस्कृत में भी। और उसको कहा कि अम्बरीश को दंड दो। अब जब ये दुर्वासा मुनि ने किया तो उस वक्त अम्बरीश ने क्या किया, ये आज हमारा आज का श्लोक है हमारा। तो ऐसी स्थिति में दुर्वासा के क्रोध के सामने कृत्या जो उन्होंने एक असुर प्रकट किया, ऐसे भगवान शंकर ने वीरभद्र को अपनी जटाओं से प्रकट किया था, जिसको दक्ष के यज्ञ में भेजा था, वो शंकर ने भी ऐसी जटाएं पटक के बनाया था। तो इसको वो वीरभद्र जी गए थे दक्ष को दंड देने के लिए, और यहां दंड देने के लिए जा रहे हैं ये कृत्य जा रही है। तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति में महाराज अम्बरीश ने क्या किया, ये आज का श्लोक है। अब ये आपको ध्यान में आ रहा है कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, आप तो पढ़िए श्लोक को। अब प्रागदिष्टम भृत्य रक्षाया पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्रम। क्रुद्धा अहिम इव पावकः प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्रम। क्रुद्धाहिम इव पावकः प्रागदृष्टं भृत्य रक्षाया पुरुषेण महात्मना तदाह कृत्यां ताम चक्रम। क्रुद्धाहिम इव पावकः। जय श्री कृष्ण बलराम श्री राधा राधिका रमण की जय। आवृत्ति कीजिए। प्रागदृष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्र। क्रुद्वाहिमिव पावकः प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम्। प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्रम्। माताजी प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां तेन महात्मना ददाह कृत्यायां तां चक्रम्। कुर्द अहिमिव पावकः प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां चक्रम् पावकः प्रागदिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम्। क्रुद्ध अहिम इव पारकः। सो पहली लाइन में भगवत ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, संबंध ज्ञान भगवान का, उसका वर्णन है। दूसरी लाइन में भगवान अपने भक्तों का कैसे रक्षण करते हैं उसका वर्णन है। और तीसरी लाइन में दुर्वासा के द्वारा उत्पन्न कृत्य का विनाश का वर्णन है। और चौथी लाइन में उदाहरण है कैसे, चौथी लाइन उदाहरण है। चौथी लाइन का उदाहरण क्या है? क्रुद्ध क्रोधित अहिम सांप इव जैसे पावक अग्नि, कहीं वन में अग्नि लगे, आग लग जाए तो कितना भी सांप भयंकर क्रोधित हो जल के भस्म हो जाता। ये हुआ उदाहरण। ये उदाहरण कहां दिया गया है? भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति जड़ से ही पाप को नाश कर देती है, वहां ये उदाहरण है। क्लेशाग्नि, हाँ, उसके अंतर्गत ये एक श्लोक है पूरा, जिसमें है कि जंगल में आग लग जाने से पशु पक्षी, पक्षी तो उड़ जाएंगे, पशु भाग जाएंगे, लेकिन सांप नहीं बच सकता। कितना भी क्रोधी हो, और सांप की विशेषता क्या है? ईर्ष्यालु होता है। सांप की संज्ञा ईर्ष्या से दी गई है। ईर्ष्यालु मतलब जो दूसरे से घृणा, दूसरे से द्वेष करने वाला है। कितना भी कोई शत्रु द्वेषी हो, सांप से ज्यादा भी अधिक एनवियस हो, ईर्ष्यालु हो, लेकिन भगवान के भक्त की भक्ति के प्रभाव से वो ऐसे जल जाता है जैसे वन की अग्नि में सांप जल जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। ये उदाहरण हो गया। और तीसरी लाइन में क्या है? दहा। दहा का मतलब जला दिया, दहा कर दिया। किसका दहा किया? कृत्याम। वो कृत्या का दहा किया, कृत्या जो असुर प्रकट किया था अपने योग बल से दुर्वासा जी ने। किससे जलाया? ताम मतलब भगवान के चक्रम, सुदर्शन चक्र से। किससे जलाया? सुदर्शन चक्र से जलाया। किसका सुदर्शन चक्र? भगवान का। तो ये दो, तो एक तो उदाहरण हो गया और एक उस कृत्या का विनाश हो गया। अब पहली लाइन के ऊपर प्राग दिष्टम, प्राग का मतलब पहले से ही, और दिष्टम का यहां अर्थ लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, पहले से ही ये निर्धारित था। निर्धारित था का अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण के ये पहले से वचन है। क्या वचन है? नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ये भगवान का पहले से ही संकल्प है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, अहम तुम सर्व पापे भ्यो, मैं सब पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे शरण में आओ। या एक बार कोई कहे कि मैं भगवान आपका हूं तो उसको सबसे मैं रक्षा देता हूं। तो ये तो भगवान का वचन है, ये तो भाई किसी ने सुना होगा तब पता होगा ना। तो इस इन दो शब्दों से अम्बरीश महाराज के विश्वास, जो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कहने सर्व सिद्धि होए, ये संकल्प दिखता है। उसको विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करता है, तो इसके ऊपर मुझे दृढ़ विश्वास है। ये इस शब्द से ध्वनित हो रहा है, प्राक दृष्ट। और दूसरा शब्द भृत्य रक्षायाम, भृत्य का मतलब है अपने, जिसने स्वरूप को पहचान लिया है, स्वरूप भक्ति से जब समझ लिया है कि मैं भगवान का, भृत्य मतलब दास, तो जो भगवान का दास समझ लेता है अपने आप को, अब राजा होते हुए भी अपने को भगवान का दास समझ रहा था, ये अम्बरीश महाराज की भक्ति का प्रभाव है। क्योंकि भक्ति क्या प्राप्त कराती है? अपना स्वरूप। तो भृत्य रक्षायाम मतलब भगवान का ये पहले से ही निर्धारित नेम है, ये योजना है कि भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। यहां तक कि मेरा हाथ भी अगर भक्तों का अपराध करे तो मैं अपने हाथ को काट देता हूं, यहां तक भगवान कहते हैं। ये भगवान के बहुत बड़े और इसी अम्बरीश महाराज के श्लोक के ऊपर वैष्णव संप्रदायों का आधार है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहता हूं। इस श्लोक के आधार के ऊपर चारों वैष्णव संप्रदाय जो है टिकी हुई, ये उनका मूल आधार है। ये भगवान के जो वचन है ये वैष्णव संप्रदाय का आधार है कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उससे ज्यादा किसी को प्रिय नहीं समझते। भक्त के लिए जैसे भगवान कहते हैं उद्धव, न तो इतना मुझे लक्ष्मी प्रिय है, न इतना बलराम प्रिय है, इतना मैं न अपने आप को इतना प्रेम करता हूं जितना मैं भक्तों से प्रेम करता हूं। तो ये जो भगवान के वचन है, ये तो सुने होंगे अम्बरीश ने, तब तो उसका ये दृढ़ संकल्प होगा ना। अब दूसरी लाइन में है पुरुषेण, पुरुषेण का मतलब परम पुरुष भगवान के द्वारा, और महात्मना जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो हृदय में परमात्मा बैठे हुए थे उसने अम्बरीश महाराज को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत हो जाओ, ये कृत्य आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। इसका अर्थ ये। अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस शब्दों का अर्थ समझ में आ गया? जिस प्रकार दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, ये अंतिम लाइन है, ठीक है। क्रुद्ध, क्रुद्ध के पीछे क्या शब्द है? अई, अई किसको कहते हैं? सांप को, क्रुद्ध अई, और अग्नि पावक है, ठीक है। उसी प्रकार पहले से आदिष्ट, पहले से आदिष्ट मतलब प्राग दृष्टम, जैसे पहले से भगवान ने नियम बना रखा है, पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर क्षार कर दिया, भस्म कर दिया। ये श्लोक का अर्थ है। इतना ही काम नहीं किया सुदर्शन चक्र ने, कृत्या को जलाने के बाद कृत्या को पैदा करने वाले के पीछे पड़ा, इसके बाद उसने ये काम किया। ये अच्छा किया असल में। अगर कृत्या को नहीं जलाता चक्कर, तो नेम ये है कि कृत्या जाएगी अम्बरीश के पास। अम्बरीश तो है भक्त, तो अम्बरीश का कृत्या तो कुछ अनिष्ट कर नहीं पाएगी। तो नेम ये है जिसने बनाई है, अगर वो काम नहीं किया तो जिसने बनाई है उसको मारेगी। तो वो वापस जाके दुर्वासो को ही मारती, ये कृत्या का नेम है। जिसने बनाया किसी दूसरे के लिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो वापस आके उसी के ऊपर, ये तो दुनिया का नेम है ना। आप किसी को कोई चीज दो, आपने लेटर किसी को भेजा, सामने लेने वाला नहीं है, तो रजिस्ट्री आपके घर में वापस आएगी ना। ये तो नेम है दुनिया का। ऐसे शंड और अमरक ने कृत्या बनाई थी प्रहलाद को मारने के लिए। प्रहलाद तो गोविंद के गुण गा रहा था, तो कृत्या कुछ बिगाड़ नहीं पे, वापस जाके शंड और अमर को मार दिया। जब प्रहलाद को यह पता लगा तो उसने भगवान को कहा, भगवान जितने प्रकार से मुझे मारने का प्रयास किया उनके प्रति अगर मेरी द्वेष दृष्टि नहीं है तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए। उसने जैसे क्षमा की वो वापस जीवित हो गए। ये अन्य पुराणों में इस कृत्या का वर्णन है। तो ये भगवान ने भस्म क्यों किया? क्योंकि असल में द्वेष करने के लिए नहीं आए थे दुर्वासा, परीक्षा है, इसलिए लीला के अंतर्गत आएगा। तो कृत्या को नष्ट कर दिया तो दोनों की रक्षा होगी एक दृष्टि से। नहीं तो आप दुर्वासा सामान्य व्यक्ति होता तो क्या वो ब्रह्मलोक जा सकता था, शंकर के लोक में जा सकता था? वैकुंठ जाने की उसमें सामर्थ्य थी कि नहीं? तो जिसमें वैकुंठ जाने की सामर्थ्य है वो सामान्य तो नहीं है ना, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। जो वैकुंठ तक जाने में सामर्थ्य है उसमें वैकुंठ जाने की सामर्थ्य, और वैकुंठ चला भी गया, तो ये बहुत ये सामान्य बात नहीं है। तो अब इस स्थिति में प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर, शुद्ध भक्त होने के कारण, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज है, शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ऐसे संकट में पढ़कर भी न तो अपने स्थान से रंच भर हटे, भयभीत होके भागे नहीं, नहीं भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की। यह कौन सा शुद्ध भक्ति का अंग है? यह है शरणागति का लक्षण, अवश्य रक्षिते। ये हुआ पहले का, कि कहीं रंच भर हटे नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान रक्षा अवश्य करेंगे। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है क्या, भगवान को भी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की ये, और ऊपर लिखा है शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति में भगवान को प्रार्थना के लिए रक्षा नहीं की ये कहां आता है। अन्य अभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं थी। पांडवों को जब ब्रह्मास्त्र पांच मारने के लिए आ रहे थे अश्वस्थामा के, पांडवों ने भगवान को प्रार्थना नहीं की रक्षा की, स्वयं भगवान ने अपने आप रक्षा की। उत्तरा ने तो प्रार्थना की थी लेकिन पांडवों ने नहीं की थी। प्रायः भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि ये ऐसी है जैसे भाई क्या प्रार्थना क्यों करें, भगवान को मालूम नहीं है, भगवान जानते हैं तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। भाई मां को बच्चा है, बच्चे मालूम है कि बच्चे को कब क्या खिलाना है, तो ये पूर्ण रूप से निर्धारित है, उसका लक्षण है दो शब्दों में। तो ऐसे एनालिसिस करेंगे तो उसको कोई कोई अभिलाषा नहीं थी। प्रभुपाद लिखते हैं मृत्यु का डर नहीं है, भक्त को क्या मृत्यु का डर है, मृत्यु क्या बिगाड़ेगी भक्त का। तो वहां डटे रहे और भगवान को प्रार्थना भी नहीं की, पहली बात। दो बात, वे विचार में, हां वे विचार में स्थित थे, वे विचार में स्थित थे, अतएव ये स्पष्ट था कि वे अपने मन में भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे। वो विचार में स्थित थे, इसका मतलब क्या, He was fixed in understanding. तो विचार, वो विचार में स्थित थे, हिंदी में पढ़ना अटपटा नहीं लगता है। He was fixed in understanding. कौन सी अंडरस्टैंडिंग में फिक्स था, वो भी है यहां। बाकी सब नेम एक नेम के पालन के लिए, वो कौन सा नेम है, ऑलवेज नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये उनका भक्ति में पक्का विश्वास था। क्या कि कृष्ण को कभी नहीं भूलना है कैसी भी परिस्थिति में। क्या है श्लोक कैसे है, सुमर्तव्य सततम विष्णु, और दूसरा इतना कहने से काम नहीं चला, पर उल्टा भी बोल दिया कभी उसको नहीं भूलना है, ये चिंतन उनका, इस ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी, वो इस बात को जानते थे। इसलिए प्रभुपाद ने दूसरी लाइन में क्या लिख दिया नीचे, कि वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, अपने मन में भगवान का चिंतन कर रहे थे। इसलिए आगे वाला उसके साथ जुड़े, क्या कर रहे थे, क्यों, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि निरंतर भगवान का कभी भूलना नहीं चाहिए। निरंतर भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता रहता है। कर्तव्य के रूप में करता रहता है का मतलब क्या, भगवान की पूजा पाठ किसी लाभ लालच के लिए नहीं करता है, वो अपना धर्म समझ के करता है कि ये मेरा स्वधर्म है, इसलिए उसको मृत्यु का डर नहीं होता है। भाई मृत्यु आती है तो किसको ले जाती है, शरीर किसी का उठा के गई आजकल मृत्यु, हाँ नहीं ना, तो किसको ले जाती है। भाई मृत्यु का मतलब है यमदूत आते हैं किसको ले जाते हैं, हाँ जीवात्मा को, और जीवात्मा के ऊपर कौन सा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या अंग हैं, मन बुद्धि अहंकार, और यहां मन में भगवान बैठा हुआ है तो यमदूत क्या करेगा, दूर से प्रणाम करके चला जाए ना, तो कुछ उसका बिगाड़ेगा। चौथा भी अंग सूक्ष्म शरीर में चित्त होता है, उसका अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सूक्ष्म शरीर का अंग है, जब तक चेतना भौतिक है तब तक जन्म लेना पड़ेगा, जब चेतना कृष्ण भावना भावित हुई तो मुक्ति हो गई। तो चौथा अंग, वैसे सूक्ष्म शरीर का चौथे स्कंद भागवत में पढ़ेंगे तो वो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है कि इंद्रियां भी उसके अंदर है, मन के ऊपर सारी इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, प्राण है, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंदर है। हमारे शरीर बाहर के बदले हैं, मन तो हमारा वही है जो पहले दिन से हमारे साथ है। इसलिए मन के अंदर तो कई जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के वो हमारे साथ ही रह रहा है, कभी अलग नहीं हुआ है मन। जैसे परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता है जब तक हम भौतिक जगत में, मन भी हमारे साथ भूत होके लगा हुआ है, वो भी छोड़ता नहीं। तो मन ही तो दूसरा शरीर लेने के लिए हमको बाध्य करता है। तो बात क्या हो गई, कथा के कहां खड़ी हो गई कि क्यों नहीं मौत से डरता है? ये यमदूत आते ही नहीं है भक्त के पास, ये तो यमराज ने बोल के भेजा। कंठी माला पहनी हुई, उसके नजदीक जाना नहीं, तिलक लगाया हो उसको हाथ लगाना नहीं, जिसके मुख से गोविंद का नाम निकले उधर कभी तुम भटकना नहीं। वो तो एक बार अजामिल से दुर्गति हुई, तब से तो वृंदावन वाले कहते हैं कि एक आदमी मर गया रास्ते में, ऊपर से कौवे ने जाते हुए और यहाँ विष्ठा कर दी, वो ऐसे तिलक जैसे लगा, यमदूत आके दूर खड़े हैं, कहते इसको हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं, ये तो और तिलक लगा हुआ है। तो ऐसे कौवे के विष्ठा के तिलक से भी यमदूत भागते हैं, तो रोज जो तिलक लगाए उसको कोई भय होगा क्या? नहीं। तो ये तिलक तो रोज लगाना ही चाहिए, सबको लगाना चाहिए, इसमें शर्म क्यों आती है? गाली देते हुए शर्म आती नहीं है, बेईमानी करते हुए शर्म आती नहीं है, तिलक लगाने में क्यों लजा आती है? अच्छी तरह से लगा के जाना चाहिए, कहीं भी ऊर्ध्वपुंड सर के ऊपर लगाना चाहिए। हाँ, इसमें क्यों लजा करनी चाहिए? कितने सारे काम हम करते हैं जिसमें लजा करनी चाहिए, उसमें तो लजा आती नहीं, और तिलक लजाना कंठी पहनने में लजा आती है। क्या कितना अधर्म में करने में डर नहीं है, धर्म करने में डर रहे। तो ये इसका सिद्धांत स्थापित हुआ, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, इसका मतलब भगवान का चिंतन किसी लाभ के लिए नहीं करता है, अपना स्वरूप है इसलिए करता है। स्वधर्म दो प्रकार के हैं, एक तो शरीर का स्वधर्म है, एक आत्मा का स्वधर्म है। तो आत्मा का स्वधर्म भगवान की भक्ति करना, इसलिए वो अपने स्वधर्म में स्थित होता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जैसे कि प्राग दृष्टम शब्द से सूचित होता है, भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान के लिए शब्द क्या है? पुरुषेण महात्मना। महात्मना का मतलब प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड में क्या लिखा है शब्द अर्थ में, हृदय में परमात्मा। तो सबके हृदय में बैठे परमात्मा जानते हैं ना, तो भगवान सब कुछ जानते हैं अपने भक्त के विषय में। अतएव उसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था। ऐसे कहते हैं कि जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कहां है? बोला सर्वत्र है। तो उस वक्त हिरण्यकश्यपु ने ऐसे उंगली उठाई, उस वक्त भगवान अनुकंपित हो गए, मतलब कांपने लगे। अनुकंपित का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब सामने वाले की हालत को देख के कांपे, अनु का मतलब सामने वाला, पहले कोई होगा तब ना अनुकंपा होती है। तो भगवान कहते हैं ये मूर्ख कहां हाथ रखेगा पता नहीं, और मेरा भक्त है उसको तो विश्वास है मैं सर्वत्र हूं। इसलिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप की उंगली के ऊपर ऐसे नजर टिकाई, जा रखेगा वही से प्रकट हूंगा, क्योंकि मेरा भक्त तो बोल देगा, उसको तो वो पता है कि मैं सब जगह हूं। तो भगवान इतने कॉन्शियस हो गए उसकी उंगली के कि कहां रखेगा। तो भाई दुर्वासा क्यों आए थे ये भी तो भगवान परमात्मा के रूप में जानते थे ना कि क्यों आए हैं और क्या करेंगे, ये भी भगवान को मालूम था ना। तो भक्त की रक्षा कैसे करनी है ये भी तो भगवान को मालूम होगा कि नहीं होगा। तो दोनों जगह परमात्मा, इसलिए महात्मना शब्द दिया है। पुरुषेण महात्मना शब्द देने से हृदय की बात जानने वाला परमात्मा, अंतर्यामी, उसका नाम ही अंतर्यामी है। यहां तो किसी का नाम अंतर्यामी रखते हैं उसको तो अपना ही पता नहीं होता है। हरे कृष्णा। अच्छा जी, भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। कोई लड़का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसका एनरोल कार्ड बनता है ना, एडमिशन की होती है तब बन जाता है ना, तब से वो कहता है इसमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और उसको जो 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 मिलता है कार्ड उसके ऊपर किराया भी आधा हो जाता है, सब उसको सुविधाएं मिलती है कि नहीं मिलती। अभी उसने ग्रेजुएशन किया नहीं है, पता नहीं 10 बार फेल होगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन कार्ड है तो काम चलता है कि नहीं चलता है। तो ऐसे भक्ति शुरू करते ही भगवान ने कार्ड दे दिया, आपकी सब कंसेशन चालू, सब कुछ चालू हो गया अपने आप। उसको ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध भक्त बनेंगे तब भगवान रक्षा करेंगे, एडमिशन लेते ही आपको कार्ड मिल गया कि अब आप कुछ भय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है, अरे कृष्ण मंत्र जपने में कभी आलस नहीं करना, बाकी कवच पहनो या चक्कर कुछ भी करो कुछ फर्म नहीं, जब जपोगे तभी काम होगा, और कोई रास्ता नहीं। बहुत से लोग चक्कर वक्कर पहनते, पता नहीं कवच वच क्या क्या पहनते, उससे कुछ नहीं होता है, अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये रक्षा का सूत्र है। भगवान ने यही कहा है कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु यही महामंत्र लाए हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं लो मांगे, ये मांग के ले लो, तेरी रक्षा का सूत्र यही है। तो ये जपते रहेंगे उसकी रक्षा का भार भगवान, जिस दिन वो भक्त बनता है उस दिन क्या है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, कृष्ण करे, इसका मतलब है दीक्षा लेता है तो भगवान उसको अपना मान लेता है, अपना माने कृष्ण, ऐसा नहीं गुरु अपना मानता है, वहां नहीं निकाल, क्योंकि कृष्ण गुरु है असल में, वो तो गुरु प्रतिनिधि है कृष्ण का, इसलिए भगवान को प्रसन्न कैसे भगवान को संतुष्ट कैसे करना है, भक्त के माध्यम से। उदाहरण क्या अच्छा दिया है, गर्भवती स्त्री के बच्चे की पोषण रक्षण करने के लिए बच्चा तो नहीं दिखता है, मां को खिलाते हैं तो बच्चे को सब अपने आप मिलता है क्या, नहीं मिलता है भाई, बच्चे का पोषण कैसे होता है, मां को देने से ना। ऐसे भक्त को, भक्त के हृदय में भगवान तो जागृत है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारा, तो उसका कृष्ण तो हृदय में, तो जिसके हृदय में कृष्ण है वो भक्त की सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, ये सिद्धांत ये है। उदाहरण इसलिए ये उदाहरण दिया, अभी 3 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने ये कह दिया है, क्या कौनते प्रतिजाने नमे भक्त प्रणश्यति कुंते, ये किसके लिए भगवान ने कहा था, अपिचेत दुराचारो, ये कोई भले आदमी के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसका उसकी विशेषता क्या थी, सम्यक स्थितो ही स, वो सही जगह पे आ गया, उसकी स्थिति अनन्यास चिंतन, यहां क्या शब्द है, अपिचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाक, ये हुआ भक्ति अनन्य भाक, भजते माम अनन्य साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, वो अच्छी सम्यक रूप से अच्छी तरह से व्यवस्थित है, मैं उसकी अनन्य भक्ति कर रहा है, वो त्रुटि हो गई है लेकिन फिर भी उस उधर कहा है रक्षते, ऐसे नहीं है किसी महात्मा के लिए, ये कैसा नहीं नारद के लिए कहा है कि वो मेरा भक्त है उसकी रक्षा करूंगा, वो तो अभी गलतियां हो रही है फिर भी भगवान ने उसको अपना मान लिया। यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं, इसकी पुष्टि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में की गई है, और अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि माम सुच, मोक्ष इष्यामि तक लिखा है प्रभुपाद जी ने, सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, हो जाता है, जाता है कि बीच में एक क्या डाला देखो, ये हिंदी कोई पढ़ सकता है, हिंदी वाला है पढ़ो तो लिखा के, जाते के बीच में क्या डाला है, मिस प्रिंट है, इसका मतलब जप नहीं करेगा वो मिस हो जाएगा, यहां भी सुरक्षा का व्यवस्था व्यवस्था अपने आप कर ली है, हो जाता है लेकिन उसके बीच में है और जाता के बीच में एक गोला है कि आपने जपने में गोला किया
तो वहां गोला काम करेगा।
ये तो अपने आप आया ना, अगर आया है तो कोई कारण होगा ना। मतलब दिखाए वाली भक्ति नहीं चलेगी, असली भक्ति होगी तब काम चलेगा। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावना अमृत में ठोस प्रगति कर सकता है। आप इतने भक्त ना मंदिर में रह रहे हैं, कितने कितने हैं, 100 कितने हो गए, 80-90-100 हाँ 60 भक्त हैं। अरे माँ पीछे बैठे हो गृहस्थी माता जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हाँ कोई 10 वाला है एक भी? 4-5 से ज्यादा कोई नहीं होगा, है ना? कितने पापड़ बेलते हैं पूछो, घर से सुबह कितने बजे निकलते हैं घर वाले, हाँ? और सारा दिन कितने परेशान है, 4 आदमियों का पेट पाले, और यहाँ 60 आदमी 3 टाइम मौज करके खा रहे हैं। है कोई चिंता? कथा वो पूरी हुई नहीं, ऊपर गए नहीं, प्रसाद तैयार पड़ा है, अन्नकूट रोज भोज पड़ा है। कुछ है चिंता है बताओ? कोई चिंता है? लोग कहते हैं अब भाव बढ़ गया, दाल महंगी हो गई, आटा महंगा घी, इसका यहाँ कुछ पता नहीं है। यहाँ क्या महंगा हुआ, हमारा क्या जाए उससे, भगवान हमारे को तो सुबह शाम दे ही रहा है, तो 3 टाइम भे बन, इतना बड़ा महल दे दिया है भगवान ने, कोई कमी की है क्या? तो अभी से पता लग रहा है कि नहीं आपको कितनी परेशानी है, और ये इतने कितने बेफिक्र है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, क्योंकि उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो हमेशा प्रभुपाद जी के अनुभव का ये 58 श्लोक 18वें अध्याय का तात्पर्य पढ़ते हैं। वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, और अपने मित्र की सब सुविधाओं की चिंता भगवान करते हैं। बिकम इंटीमेट फ्रेंड एंड लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ हिज डिवोटी। ऐसे नहीं दिखाया कि उसकी नीड्स कंफर्ट, कंफर्ट शब्द लिख के प्रभुपाद ने अपना अनुभव बताया है कि कितना भगवान ने मुझे आरामदायक सुविधाएं दी। और फिर लिखा है इतना भी नहीं, भगवान अपने आप को उस भक्त के हवाले कर देते हैं। ये प्रभुपाद का अनुभव पढ़ने जैसा है, 18 के 58 में देख लेना जाके। और श्रील प्रभुपाद जी दूसरे 10वें स्कंद के 2 अध्याय में कहते हैं कि हमारे सैकड़ों भक्त हैं, कोई निर्धारित निश्चित कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उनको ऑप्युलेंटली मेंटेन बाय, ये परपट पढ़ लेना कभी, सेकंड चैप्टर 10th कैंटो में, कि सैकड़ों भक्त हैं। यहाँ से अमेरिका कमाने गए हैं बहुत सारे लोगों के बच्चे, माँ बाप को देखने के लिए साल में नहीं 2 में एक बार आते हैं। कभी सोचते हैं इस साल में बच्चों को घुमाने ले गए तो घर नहीं जा सकते, वो साल में एक समय का टिकट का पैसा बचा नहीं पा रहे, और यहाँ हमारे भक्त साल में 10 अमेरिका होके आते हैं, कोई काम नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो तो 1 बार क्या 2 बार क्या 10 जाते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं। तो बताओ कि वो परेशान है कि भक्त परेशान है कि? समझ में आ रहा है कुछ? आपके मन करे वृंदावन जाओ, नहीं जा सकते, दुकान है, मकान है, काम है, या ब्रह्मचारी माथे में आया कि ब्रह्मांड में जाना है, उठाए और चले गए वृंदावन, गाड़ी उठाए गए वृंदावन, मुझे घूम के वापस आए, कोई रोक टोक है क्या? कितना बड़ा सुविधा है, ये जो शब्द लिखा है कितना आसान काम कर दिया। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की सब व्यवस्था करते हैं, उसको कुछ चिंता नहीं, अपनी भक्ति को पक्का करे। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों ना हो, इसका मतलब व्यक्ति कितना भी ईर्ष्यालु और भक्त का कितना भी हानि करने का प्रयास क्यों ना करता हो, जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रोध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है, उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं रहती है। यद्यपि हरे कृष्ण, यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, जैसे हिरण्यकशिपु या रावण, वो भक्ति की अग्नि के समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है, उसका विनाश हो जाता है, यहां तात्पर्य समाप्त होता है। इसका अर्थ है कि हमारे को अपनी रक्षा का सूत्र ये हरि कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरह से जपना चाहिए और भगवान की रक्षा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और ये अम्बरीश महाराज की निश्चित वाली मन कृष्ण पदारविंदी, जो ये उनका मुख्य मन भगवान के स्मरण में सदा लगा रहता है, जो भक्ति का सारा सारांश है, तो ये यहाँ श्लोक विराम पे आता है। हरे कृष्ण। समय हो गया, कोई प्रश्न का समय हो और आपकी इच्छा हो तो बोलिए। हाँ जी,
हरे कृष्ण जी। आपने बताया कि जब भक्त पहले दिन से भक्ति करता है तो उसको भगवान की सुरक्षा प्रदान हो जाती है, तो इस सुरक्षा का मतलब हम कैसे समझें, किस तरह की उसकी, किस स्तर पर उसकी भक्ति की सुरक्षा मिलती है उसके सारे?
दोनों बातें अच्छी है। पहले सुरक्षा में प्रभुपाद ने कहा उसकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था करता है ताकि उसकी भक्ति में बाधा ना हो। जैसे आपको फुल टाइम भक्ति करने के लिए दिया, अभी कमाने की जो 8 घंटे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये पहली सुरक्षा था। क्या है कि आपके शरीर की आवश्यकताओं का भी देखभाल करते हैं। लेकिन ऊपर के स्तर की सुरक्षा है आपकी की हुई भक्ति और आपकी चेतना, उसमें भगवान का कभी विलोप नहीं होगा, उसमें हमेशा चेतना बनी रहेगी। भक्ति कैसे भगवान रक्षा करते हैं, एक शरीर में पूरी नहीं हुई तो दूसरे शरीर में भी उस भक्ति की रक्षा करते हैं, वहां से आगे भक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर देते हैं। पहला जो प्रभुपाद के आज के तात्पर्य में जैसे दिखता है कि उसको दुनिया के कामकार के व्यवहार से बचा लेते हैं, तो उसका पूरा समय भगवान की सेवा के कामों में लग जाता है। तो ये उसकी सुरक्षा हुई माया से। बाहर काम करेंगे तो माया से जूझना पड़ेगा, अब तो भक्तों के संग में रह रहे हैं, ये पहली सुरक्षा भक्तों का संग है, वो भक्ति में पहले मिलता है। और बाकी भक्त की ये हम उदाहरण कभी देते हैं कि नवे भक्त प्रणश्यति, तब हम उदाहरण प्राय आधुनिक आज देते हैं कि जयपिता कृष्णस्वामी महाराज को इतना बड़ा शारीरिक कष्ट, लेकिन उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके श्लोकों का भी उच्चारण करने में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके प्रचार करने के उत्साह में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उनकी भक्ति को भगवान ने रक्षा कर ली। ऐसे राधा गोविंद स्वामी महाराज की बात करते हैं, शरीर से तो कष्ट आया कोई बात नहीं, ये तो प्रारब्ध है शरीर का, लेकिन उनकी चेतना में कोई परिवर्तन। रोज ब्रज में कहीं ना कहीं दर्शन करने जाते हैं, कथा करते हैं, वैसे की वैसे कर रहे हैं, वो श्लोक वैसे के वैसे याद पड़े, ये भक्ति की रक्षा का उदाहरण देते हैं। तब ये उदाहरण देते हैं आज अभी इस वक्त जो देखने को मिलता है, और बाकी जो सामान्य भक्तों की सारी सुविधाओं का उदाहरण देते हैं कि भगवान ने किसी चीज की उनके लिए चिंता की बात रखी नहीं है, कमी रखी नहीं है। लोग तो पुस्तक खरीद नहीं सकते और सब भक्तों के पास सारे पुस्तक सब उपलब्ध होते, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग खरीदने के लिए लोग नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आपको काय के लिए बाहर जाके पुस्तक वितरण करना पड़े, लोग यहीं आके ले जाए ना, नहीं ले सकते। कितना प्रयास करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है किताब ले लो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।